राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 29/7/92 को प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री राम द्वारा मथाने में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण 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 नारायण
धन्यवाद ताकत चाहिए चाहे बड़ा बड़ा विमान मोक्ष पराण केवल कल्याण ही करना है इसलिए प्राण हो जाओ कि महाराज केवल हो जाए आपके तरह बाबा जी थोड़ी देर मांगे रोटी मिल जाए कमाते हैं अगर हम नहीं कमाते तो तुम खाओ क्या। मालूम होता है कि आप रोटी हमारे लिए ही बनाते हो हमारी आपके चिंता है क्यों बस आप झूठ बोलते हो। दादू दुनिया बावरी सोच करे है गहरी रोटी जैसी राम जी दोपहर पहले छुप दे आप ही देगा नीचे नीचे जानवर है वे भी पेट भरते हैं तो मनुष्य भूखमर मर जाएगा। मनुष्य तो सबका पालन करने वाला तो काम करो तो भगवान के लिए काम करो खेती करो भगवान के लिए घर में रसोई बनाओ सब ठाकुर जी के भोग लगाना है बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाए ठाकुर जी को भोग लगाया अब ठाकुर जी का प्रसाद पाते खाना खाना नहीं खाना खाते नहीं। हमारे सज्जन वैष्णव खाना नहीं खाते हैं प्रसाद पाते हैं ठाकुर जी का प्रसाद ठाकुर जी के लिए बनता है ठाकुर जी के भोग लगता है प्रसाद पाते हैं ऐसे मोक्ष परायण केवल भगवान की प्राप्ति करना भगवान का भजन काम करो तो भगवान के लिए उठो तो भगवान के लिए मुंह धो तो भगवान के लिए स्नान करो तो भगवान के लिए कपड़ा धो तो भगवान के लिए आप विचलित होगा छत्ती पूजा करो वो भगवान के अर्पण क्योंकि भगवान का ये है अर्पण कर दिया कि उसको साफ करना भगवान का काम नहीं है क्या। घर में चट्टी पेशाब घर होता है उनको साफ करना मालिक का काम नहीं है कोई मालिक का ही काम है तो भगवान का काम करते हैं सौ स्नान सब भगवान के लिए हट जाओ यज करो सी यद स्ना सी यज जो हो सी गजा सी यद तपस्या परम शुभा शुभ फले रहे सुबह 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 हो जाएगा भया क्रोध ऐसा हो गया सदा मुक्त एवं ये ध्यान योग के दो श्लोक है ये बीज है इसका वर्णन हमारी छठे अध्याय में किया विस्तार से छठे अध्याय में मधुसूदन ने लिखा है पूरा दीपिका में ध्यान योगम त्रिभी श्लोके पंचमान्ते यदि ऋतम सत्यारभ्यते ध्याय तद्व्याख्यानाय विश्राम उन्हें तीन काम दो मानते हैं। अब आप भक्ति का है बहुत सारे यज्ञ तब साहब सरो लोग हम जो यज्ञ करे दान करे तप करे व्रत करे उपवास करे चले फिरे जामे तो एक एक कदम भगवान के अर्पण करो एक एक कदम पानी पियो तो भगवान के अर्पण भोजन करो भगवान के अर्पण भगवान की प्रसन्नता के लिए करो कितनी बढ़िया बात है। और सब लोगों का महान ईश्वर भगवान और संपूर्ण प्राणियों का परम सूर्य भगवान सूर्य सर्वभूता नाम क्या तो मांग शांति मिल सकी। ऐसे जानने से शांति की प्राप्ति हो जाती है। कितनी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात, महान शांति मिलेगी। तो ये भगवान में लग जाओ तो भगवान क्या है, तीन बात बताई, संपूर्ण यज्ञ तप दान तीर्थ प्रसाद उनके स्वीकार करने वाले भोक्ता भगवान और संपूर्ण लोगों के महान ईश्वर भगवान और हमारे प्यारे परम प्यारे ईश्वर परम मित्र भगवान क्या, तो हम ऐसा जान लिया तो शांति की प्राप्ति हो जाती है। ये भक्ति का ज्ञान योग और कर्म योग के विषय में अर्जुन का पांचवा अध्याय के आरंभ में संन्यास शंकर बनाम कृष्ण पुनर्योग शशि ये तो दोनों की बात बताते बताते अगारी भक्ति की बात और बताते विशेष ये भगवान भक्ति की बात अपनी तरफ से बताते कैसी बढ़िया बात की बात। यह अध्याय हुआ साहब आपका पांचों कर्म संन्यास योग क्षण योग कर्मयोग का विषय प्रारंभ हुआ ये योग हो गया। नारायण 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 अब चौथा अध्याय चलाते थोड़ा सा। तीसरे अध्याय में कर्मयोग का वर्णन किया उसी तरफ कहते हैं इमं निवेशते योग इसमें 1 से 18 तक सगुण भगवान का प्रभाव और निष्काम कर्मयोग का विषय 19 से 23 तक योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा और 24 से 32 तक फल सहित प्रसिद्ध यज्ञों का कथन और 33 से 40 ज्ञान की महिमा इसका विषय है। भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो मैंने सूर्य भगवान को कहा था, सूर्य ने अपने विवेशवान ने मनु को कहा और मनु ने इक्ष्वाकु को कहा एवं परंपरा प्राप्त ऐसे राजऋषि जानते थे, राजा होते हुए ऋषि भी जानते थे। वो सरकार ने हमेशा योग नष्ट परंतु कर्मयोग लुप्त प्राय हो गया। ज्ञान की चर्चा होती है थोड़ी भक्ति की चर्चा होती है कर्मयोग की चर्चा ही नहीं होती। आज से 5000 वर्ष पहले भगवान ने कहा था, उस समय भगवान कहते योगो नष्ट योग लुप्त प्राय हो गया, बहुत कम इसको जानने वाले बहुत कम है ऐसा करना। सर्वायु माया तेज योग पुरातन ये पुराना योग मैंने आज तेरे को कहा है क्यों भक्तों से मेरे सगा से तो मेरा भक्त भी है मित्र भी है रहस्य उत्तम रहस्य ये योग भी रहस्य है परंतु तू मेरा भक्त है सखा है और मैंने कहा था ये रहस्य की बात है ये हरेक कृष्ण हम कहने की नहीं है मैं साक्षात परमात्मा पहले ही पहले सूर्य चंद्रों से उधाता यथा पूर्व मकर विकल्प के आदि में सूर्य चंद्रमा होते थे सूर्य को मैंने उपदेश दिया पहले तो मेरा सबको अपने काम में लगाओ सृष्टि पर
है रहस्य क्या है
रहस्य वही मैं हूँ जो पहले उपदेश देने वाला है वही मैं आज तेरे को कह रहा हूँ ये रहस्य की छिपी हुई बात होती है हरेक जानता नहीं उत्तम रहस्य हूँ ये मेरा उत्तम रहस्य है अरे को पता नहीं तो सूर्य भगवान को बोले क्योंकि सृष्टि है भगवो देव से धीमा ही तन्नो राम तन्नो ऊपर मास पूर्व सासुरणी तन्नो राम प्रसोदिया हमारे उस संस्कर्म में लगाओ तो वो पहला जो भर गया वो सूर्य है, पहला पहले सूर्य परंतु किसी हुआ, अब सृष्टि पैदा हो गई, तो सृष्टि में होने वाले जीव सुगमता से मेरे को कैसे प्राप्त हो जाए, क्योंकि रजसी प्रलिंग कर्म संगीश हो जाए, कर्मियों पैदा होते वो कर्म योग हो जाएगा, सब कर्म योग हो जाएगा परमात्मा प्राप्ति का, तो पहले दिया ऐसी परंपरा प्राप्त थी एवं परंपरा प्राप्त राजसी सकाले माता योग वो बहुत समय होने से लुप्त प्राय हो गया, सहवाय माया से जय योग भक्तों से भी सका से। अर्जुन बोले कि महाराज आपने बात कही हमारे समझ में आए, अपनम भूतो जन्म अभी तो आपका जन्म हुआ है, और सूर्य कई युगों पहले प्रकट हुए महासर के आदि में, ब्रह्मा जी की भी आदि उम्र हो गई है, ब्रह्मा फरार थे 50 वर्ष से अधिक हो गई है ब्रह्मा जी बाबा की उम्र, और आदि में आपने सूर्य को कहा था तो वो तो तब प्रकट हुए, आप अब प्रकट हुए हो थोड़े वर्षों से, अपरम बहुत जन्म परम जन्म दिवस होता कथ में तक विचार नहीं तुम्हारे ऊपर आदि में आपने उपदेश सूर्य हो दिया कैसे जाने, भगवान कहते हैं तू समझता नहीं, सुन बहुत ही बदितानी जन्मानी तब चाहिए मेरे और तेरे बहुत जन्म पहले बहुत बार जन्म हुआ है, सांजन बेद सलमान वो संपूर्ण जन्मों को मैं जानता हूँ, न तुम व्यथा परम तप तू सचुरता परम तापी है प्राण शत्रुओं तापसी तापसी परम तप तू नहीं जानता, राघव जब तक हृदय में रहते तब मैंने ये अगर मिल जाए तो हृदय सच हो जाता है, सब जानने लग जाता नहीं तुम व्यथा करो तो आप ऐसे हाँ सुन मेरी बात सुन, अब भगवान बताते अब सुन जो पाठ करते हो रोजाना अब उनकी व्याख्या ये सुन दो ध्यान दे करके, यह छठा श्लोक है इसमें छह बातों है, अजोपी सन अभ्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपी सन, तीन बात बताई, अज हुआ अभ्यात्मा होता हुआ और प्राणियों का ईश्वर होता हुआ, प्रकृति स्वाम अधिष्ठा अपनी प्रकृति को प्रश्न करके योग माया संभव आगी योग माया के द्वारा प्रकट होता हूँ, ये भगवान के अवतार का खास अजो की सन्न अभ्यात्मा सन्न पुत्र सन्न थे कि मैं प्रकट होता हूँ तो माँ बाप की आज्ञा पालन करता हूँ, वनवास में चले गए 14 वर्ष के लिए माँ ने कह दिया, वहां कहा कि मैं पिताजी की आज्ञा टाल नहीं सकता, हाला जहर पी सकता हूँ, पते में पाव के अग्नि में कूद सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ, परंतु पिता की आज्ञा भंग करने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है, इतना मैं प्रतंत्र हो जाता हूँ, परंतु को अज होता ही जन्म लेता हूँ, अज बड़ा मेरा नष्ट नहीं होता, अज भूतों का ईश्वर बड़ा नष्ट नहीं होता, मैं माँ बाप की आज्ञा पालन करता हूँ, उस समय भी माँ बाप के ऊपर शासन मेरा वैसा का वैसा ही है, और जन्म लेता हूँ तो मेरा अज बड़ा वैसा का वैसा ही है, और अंतर ध्यान हो जाऊँ तो अब दया तो मेरा बैन नहीं हुआ जन्म नहीं हुआ नाश नहीं होता, भगवान अवतार देते हैं जन्म नहीं लेते, लोगों का जन्म होता है कर्मों के कारण से, भगवान का जन्म नहीं, स्वेच्छा पात्र अपनी इच्छा से शरीर को धारण करते अपनी प्रकृति को अधिष्ठित करके, और प्राणी प्रकृति जानती है प्राणी सब प्रकृति के परवश हो जाते मेरे प्रकृति वश में रहती, अपनी योग माया से प्रकट हो योग माया का पर्दा रखता हूँ, प्रकृति को प्रकट होता हूँ और योग माया समाप्त न हम प्रकाश सर्वैसे सातवें चाहिए न हम प्रकाश सर्वैसे योग माया समाप्त भगत ही मेरे को जानते हैं, भक्त नहीं जान सकते, हमें किसी शुरू होना प्रभु ना मर्जी नहीं जान सकते, जिनकी भक्ति भी क्या जानेंगे भगवान को क्या जानेंगे, माया रो मजूर बंदो कह जाने बंदगी गंदगी को पीड़ो मूड मानस आनंद की गंदगी अकीला है क्या भगवान को सुनिए। भगवान को समझे कि भगवान के प्यारे भक्त भगवान का भजन करने वाले वो भगवान को समझते मस्त हो जाते और दुनिया को आनंद देते संसार को आनंद दुनिया को आनंद देते हैं भगत और भगवान भगवान को आनंद देता है भगत। माँ होती है बड़ी तो माँ को खुशी करता है बच्चा सामने खेलता है कूदता है माँ खुश हो जाती ऐसे भगवान के बगीचे जा रहते हैं खुश होते भगवान खुश हो जाते प्रसन्न हो जाते राजी हो जाते। छोरा माँ के सामने खेल है किसी राजी हो माँ माँ के हाथ से भोजन कर ले माँ के हाथ से पानी पी ले और माँ का कपड़ा ओढ़ ले और माँ की गोदी में सो जाए माँ खुश हो जाए ऐसे भगवान की रहते हैं हमको भगवान की खाना पीना जो कुछ हमारे मिलता है वो भगवान का है ऐसे सब भगवान की गोदी में हरदम रहते हैं हरदम। एक साधु तो कहा करते भगवान की कृपा तो बिछाई हुई है भगवान की कृपा ही ओढ़ देता हूँ भगवान की कृपा ही चारों तरफ भगवान की कृपा में ही रहता हूँ हरदम कृपा भगवान की कृपा भगवान की कृपा मस्त रहते हैं पास में कुछ नहीं बाबा जी की जात रुपया लेते नहीं सुने करते नहीं चीज लेते नहीं राम राम करा से राम राम करो आओ मेरे को राम राम करो अगर कोई नहीं लेना तो दंड रहा से मारते नहीं लेता जा कर राम राम कर सकते मसान आए कि राम राम होता है दर्शन कर रहे हो ये सही साधु राम राम कर ये बात है भगवान का ही काम होता है। तो भगवान को खुश करने वाला कौन है जो भगवान अपने आय में योग माया में प्रकट होते कब प्रकट होते भगवान के जब जब धर्म की हानि होती है अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान अपने को प्रकट करते हैं कि महाराज ये कोई समय आपको प्यारा लगता है ये समय अधिक तरह से हुआ कब धर्म का नाश हो कब अधर्म की वृद्धि हो कब मैं अवतार हो ये आपके कोई शौक है नहीं तो परिद्वारा है साधु का विनाश आए दूसरे का दूसरों का विनाश करने के लिए मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए बार बार मैं युग युग में प्रकट होता हूँ मेरा प्रकट होना भक्तों की रक्षा करने और दूसरों का विनाश करने के लिए धर्म की सिद्ध स्थापना करने के लिए सब हाथ धर्म की हानि ज्यादा हो जाती सब उठे कई लोग कहते महाराज अब धर्म की हानि हो रही है अब भगवान प्रकट तो नहीं हुए
भगवान प्रकट
हो भगवान आपकी तरह कमजोर नहीं जो अपनी सफाई दे ऐसे भगवान नहीं है ये कमजोर आदमी काम है जो आप प्रकट हो आप काम करें। वीरबल से बादशाह ने पूछा कि तुम्हारे भगवान आते हैं रक्षा करने वाले हमारे कई आदमी चट हम हुकुम देते आ जाए तो भगवान के पास कोई आदमी नहीं है काम करने वाला तो स्वयं आते रक्षा करने में बताओ क्या होते कि फिर बताऊंगा। तो एक दिन बादशाह बगीचा में गए बगीचा में नदी बनाए पानी बनाए रहते उसमें नौका में घूम रहे सैर कर रहे थे तो एक आदमी गो इनका सा जाता वैसा रूप बनाओ पुतला बनाया उसके कुंवर का बच्चे का पुतला बनाया और कह दिया कि तुम ले जाओ बीर बल कर ले जाओ और वो बादशाह जब नौका में बैठे हुए मांगे तो देना पर वो हाथ में पकड़ जिसे पहले छोड़ देना तो अरे अच्छा लाओ लाओ शाहजा ने लाओ तो उसे कहने वाले ने चट दिया जो पानी में छोड़ दिया बादशाह कूदे एकदम पानी में से निकाल रहा है। बीरबल ने कहा अंदाजा आपके पास में कोई आदमी नहीं था आप खुद गए अरे भगत लड़का ढूंढ रहा है आप कहते एक लड़का है दुनिया सब लड़का है भगवान के हम काम करने के कूद पड़ते इसके लिए आज वो करेंगे समय टाइम काम है भगवान को समय नहीं मिलेगा तो भगवान कहते हैं मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए दुष्टों का विनाश करने के लिए। कहते अब क्यों नहीं करते बार कि अंतर साधु ब्राह्मण जीते हैं त्रेता युग के समय ऋषियों को खा खा कर हड्डियों की ढेर लगा दी थी। अभी तक ब्राह्मण वही कोई नहीं खाया लोगों ने। अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, गायों को खाते हैं, कोई इतने कतल करते हैं, पर साधु ब्राह्मण अभी से जीता बस रहा इनकी हड्डियां चूस ले। तब तो त्रेता युग का समय होता है, कल युग का क्या होना चाहिए बताओ। कितना समय आना चाहिए कल युग राक्षस खाते थे, आज के कम है क्या राक्षस? गया मरती है विदेशों में, आज ही सुना है कि 300 करोड़ मांस का मांस विदेशों में जाता है गायों का, और उनका चमड़ा जाता है विदेशों में। कई गौ हत्या करते हैं, क्या वो 100 से कम है? और बढ़ा रहे। स्वराज्य नहीं हुआ तब तो बहुत थोड़ी गाय मरती थी, आज लाखों गाय मरती प्रत्येक दिन में। कितने बुजुर्ग खाने पड़िए, कितने कसाई खाना खेलिए आप। अब तक ब्राह्मण नहीं खाए गए, गऊ होती है ब्राह्मण बात गुरु ब्राह्मण ही खाए थे गऊ। अब ब्राह्मण आएगा फिर साधु आएगा, इनको ही खाएंगे खूब, तब कहीं भगवान प्रकट होंगे। ये तो त्रेता युग की बात है, कल युग में कैसा होना चाहिए? कलयुग में कुछ नहीं हुआ अभी, कलयुग की संधि चल रही है द्वापर, और कलयुग की संधि 36,000 वर्ष की हमें 6,000 बीते, 30,000 तो और बाकी संधि के, इसके बाद में कलयुग शुरू होगा। कल सुना नहीं, कल युग निर्धार क्या आका करता है, ढोल बजाता है, चौड़े झाड़े चौड़े झाड़े दिन भरे दिन में चौड़ा चौथो आ गए सब लोग खाऊ 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 पैसा आ जाए रुपये आ जाए खाए रंग खा जम खा जम। ये कलयुग की महिमा ऐसे अभी भगवान के अवतार का समय नहीं आया। भगवान कृपा करते हैं तो दुनिया के हित करते हैं, स्वयं पीछे जाते हैं, पहले अपने संतों को भेजते हैं, महात्माओं को भेजते हैं, कहीं जल्दी आ जाओ जो भाई रक्षा करो। उन संतों के काबू में नहीं आता भगवान स्वयं से। अभी कीर्तन का प्रचार हो रहा है, सत्संग का प्रचार हो रहा है, आज से 80-90 वर्ष पहले ऐसे सत्संग का प्रचार नहीं था। कीर्तन की एक लहर चली 20 मई, उसे पहले नहीं था। तो ये भगवान भगत भगत पर अपने संतों को भेजते हैं कल युग के आड़ी आर लगाने के लिए, और ऐसे ही नहीं रहे तो भगवान आ गए। मेरा जन्म और कर्म ऐसा नहीं है, जैसे मनुष्यों का जन्म होता है वो होता है परवशता से, जान करके जन्म नहीं ले सकते, कर्मों के पराधीन होने से जन्म लेना पड़ता है। भगवान कहते हैं मैं तो जन्म कर्म से मेरी दिव्य हूँ, जन्म और कर्म मेरा दिव्य है, अलौकिक है, विलक्षण है, प्रकाशमान है। ऐसे जो जान लेता है वो भी शरीर छोड़कर फिर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है, मेरे को प्राप्त हो जाता है। मेरे जन्म कर्म को जान ले, जहाँ भगवान को जाना तुम्हारा राम स्वभाव जन जाना ताई भजन तुझी भावन आना, उसको भी बात नहीं भगवान की बात सुना थी तो आदि हम पुनर्जन्म नहीं थी माँ में थी सुन मेरे को प्राप्त होता है। कितनी बढ़िया बात बताई कि कोई उगल उगल है बीच राग भय क्रोध है मन में माओ पास होता राग भय क्रोध इनके नष्ट हो गए हैं, भगवान के आश्रित हो गए हैं, भगवान मय हो गए हैं। ऐसे भगवान के जन्म कर्म के तत्व को जानने वाला ज्ञान से पूछा पवित्र मदभाव मागता मदभाव सोगी मच्छी मेरे भाव को प्राप्त होगी, भगवान की प्राप्त होगी। बहुत से महाराज कृष्ण से आप प्राप्त हो गई, यही यथा माम प्रपद्यन थे, जैसे भक्त है जैसे भगवान के, भगवान मेरी माँ है, भक्त के तुम्हें माँ बन जाओ, भगवान बाप है। हाँ, एक सज्जन ने देखा है हमारे कन्हैया भोला बहुत है, कोई भी महाराज आप माँ को कहा हूँ तो माँ ही हूँ, कैसा महाराज आप मेरे बाप, हाँ बाप, महाराज आप तो गुरु जी हो, बिल्कुल गुरु जी हूँ मैं, महाराज आप तो मेरे चेला, बिल्कुल चेला हूँ तुम्हारा, सुनिए ऐसा घोड़ा है मेरा कन्हैया जो जैसा मेरा विषय ऐसा है, सुनिए ये था माम प्रवर्जन थे पांच तथे बुझाने मंगवर्षान वर्षंते मनुष्य पाल सर्व, मनुष्य सब मेरे रस्ते में ही चलते हैं, मैं करूँ जैसे लोग करते हैं, इस वास्ते श्रेष्ठ पुरुष को सुधा अच्छा आचरण करना चाहिए। ये भगवान की विलक्षणता बात बताए मनुष्य का कौन सुनता कर मनुष्य, तो महाराज ये आपका भजन न करके और बड़े बड़े कर्मों में यज्ञ करते हैं, ओम करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ करते हैं, तपस्या करते हैं, काम संता कर्म नाम सिद्धि, कर्मों की सिद्धि के लिए ये लोग करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, देवताओं से कर्मों की सिद्धि हो जाती है, क्षिप्र में मान से लगे मनुष्य लोगों में कर्म जा सिद्धि बहुत जल्दी पैदा होती है, मैं जल्दी नहीं कहूँ देवताओं को पूजन दे, ये कर्म सचिवालय जैसा कर्म करे उसे देवता देते हैं, भगवान भगवान कहते हैं भैया मैं शास्त्र पढ़ने नया श्रेष्ठ हूँ, मैंने पैदा किया है उन कर्म के बाद मुझे उसकी कर्ता भी अकर्तारम दीजिए माम अभ्य अकर्तारम दीजिए सज्जन, फर्क क्या हुआ, जैसे बाप है उससे छोरा मांगे चक्कू दो रहा है मेरे चक्कू दादा ये मरेगा कहीं खा जाएगा चक्कू ही खीला हो तो मार देने की हाथ में से चक्कू दे कैसी कसम ले जाता सो तो हाथ में नहीं तो यूं कर गया यूं कर गया अब खींचे बस रो रहा तो पता नहीं है भाई माँ बाप निगा रखते पर दुकानदार को जा करके कहो ये चीज लो रुपया लो मन दो चीज लोगे चक्कू दो तो रुपया पूरा देने पर चक्कू देते थे मरे तो वो मरो संख्या देते भगवान के मैं कह देते हूँ मेरी सब संतान है चाचू भाई माया श्रेष्ठ गुण कर मेरे बाप से सबसे करता हूँ किसी का करता हूँ नमान करदान निंदन दू सबकी रचना कर दू कर्म नहीं होते क्योंकि मुझे न मैं करूँ फल इसलिए खल विचार है या नहीं इसी मांग जो भी ज्यादा से ऐसे जो जानते हैं कर्म फिर न समझते वो कर्म से नहीं बनता ये अटकल है फल की इच्छा न और आसक्ति न रखे कर्म बंधन कारक होते नहीं ये सुना अहंकृत तो भाव बुद्ध यश न रहते थे हर चौबीस ईमान लोगों का न हंसी नी बचे थे अठारह जैसे सत्रह श्लोक में कैसे जिनके अहंकृत भाव नहीं हो और लिप्त नहीं होता काम कामना इच्छा नहीं होती सब लोगों मारो पाप से मारते ही नहीं पाप लगते ही नहीं तो भगवान की अटकल है भगवान कहते हैं मैं सस्य करता हूँ अकर्ता हूँ अभ्यम अभ्यम और अकर्ता हूँ ऐसे दूसरे को ले लो मैं जैसे अटकल बचाऊ वैसे तुम करो तुम भी बंद हो गए कर्म एवं जातवा के संगल में पूरे पहले मुंह जितने हुए ऐसे समझ कर लिखे है कुल कर्म ही होता सो तू कर्म ही कर पूरे पूरे चरण कैसा हूँ ये अठारह श्लोक तो है अभी ये पंद्रह श्लोक हुआ सोलह से बत्तीस तक कर्मों का विचार करीब हुआ नमान कर्माणी क्योंकि किन कर्म किम अकर्म जी कर्म क्या है अकर्म क्या है विकर्म क्या है बड़े बड़े पंडित मोहित हो जाते वो तेरे को प्रण कहूंगा जिसके जानने से तेरी मुक्ति हो जाए कर्मों का रहस्य कर्म योग की बात कर्म करने के ऊपर जोर दिया तीसरे अध्याय में जानने की बात कही है चौथे अध्याय में कर्म रहें बोधम से भी करना कर्म भी जानना चाहिए विकर्म भी जानना चाहिए अकर्म भी जानना चाहिए कर्मों की गति बड़ी जा रही है तो क्या है कर्म का जो अकर्म देखा अकर्म कर्म देखता है वो मनुष्य बुद्धिमान है वो योगी है संपूर्ण कर्म करने वाला है ये खास कर्म कर्मा में सोल में से चला कर्मदान विधि चार सर्वान एवं ज्ञातवा बत्तीस कर्मदान विधि चार एवं कर्मदान विधि चार एवं ज्ञातवा विमोचो से बात तो वो कर्मों का विषय भगवान कहते हैं इसमें क्या है कर्म नहीं अकर्म नहीं परिस्थिति कर्म में अकर्म देखे मन कर तो रहा है कर्म लागू हो ही नहीं कर्म फल देने को हुए नहीं जन्म देने वाला हो गई नहीं अकर्म क्या कि फलाशक्ति नहीं आशक्ति नहीं फलेच्छा नहीं कर्तृत्व अभिमान नहीं तीन स्वरूप कर्तृत्व अभिमान और फल और आशक्ति वो कर्म अकर्म हो जाते हैं और अकर्म से कर्म यह अकर्म मानो फलाशक्ति से रहे तो कर्म करे कर्म में अकर्म अकर्म में कर्म वो बुद्धिमान मनुष्य जो बुद्धिमान है मनुष्यों में वो योगी है और कृष्ण कर्म को सब कर्म कर लिया मानो निष्काम भाव कर्तृत्व का अभाव और आशक्ति नहीं फलेच्छा नहीं तो जो करता उसको कर्म कोई लागू होता ही नहीं संसार में कितने पाप हो रहे कितने पुण्य हो रहे हम उनमें हिस्सेदार कब होते हैं कि हम भी कुछ उसमें लागू हो जाते हैं हाँ हाँ करो बस लागू हो जाए फिर सरकार इतने पाप पुण्य होते हैं हम लगेगा जैसे दूसरा नहीं लगता ऐसे इस शरीर से भी अपना संबंध नहीं करते से नहीं धरा सोचते नहीं इच्छा नहीं इसमें कर्म होते हुए अकर्म है अकर्म रहते हुए कर्म करता है वो बुद्धिमान मनुष्य वो योगी है संपूर्ण कर्म कर लिया कृष्ण कृष्ण दिया इस सारवें श्लोक की व्याख्या पांच श्लोकों में की है क्या मान अच्छी बात जैसे सर्वे समारंभ काम संकल्प है जिसके सबके शुभारंभ खाना पीना गहना देना व्यापार खेती आदि करना दुलादी करना नौकरी करना सर्व आरंभ के कामना के संकल्प से रहित है तो ज्ञान आदि दग्ध कर्मानुम ज्ञान से ज्ञान से कर्म दग्ध हो गए तो कर्म अकर्म हो गया तमाहु पंडितम बुधा उसके पंडित भी उसको पंडित कहते हैं सुने मूर्ख है सो पंडित आचित कई कई आदमी मूर्खों में पंडित होते हैं गांव में एक दो आदमी कागज भाषण वाला पंडित है मूर्ख है पंडित आचित कोई हो और गे है सो पंडित आचित घर में पंडित हो रहे उनको पूछ काम करेंगे करके पंडित और के गांव से पंडित और सभा पंडित केचित वो सभा के भी जो पंडित होते हैं केचित पंडित पंडिता पंडितों में भी पंडित होते हैं तो पंडितों में पंडित है उनकी बात है ये समाह पंडित बुधा बुधा तम पंडित सब आरम्भ करते हैं काम से निर्णय कोई सब काम करते पंडितों में पंडित है विशेष जानकार त्यक्त्वा कर्म फलासंगम निश्चितो निराश्रय फल की आसक्ति छोड़ करके नित्य तृप्त निराश्रय से कर्मणि अभी प्रवृत्त हो गई नहीं अभी सुमंता कर्म कर रहा है तो नहीं उसकी कुछ नहीं करता है कर्म का फल उसको नहीं हो बंधन नहीं होगा नित्य तृप्त निराश्रय आश्रय नहीं किसी का आश्रय ये धन का आश्रय बेटों का आश्रय जमीन का आश्रय ये फंसे अरे तुम कर्मा साक्षात परमात्मा के अंश चेतन हो और आश्रय लिया जड़ का धन का आश्रय लिया मकान का आश्रय लिया ब्याज का आश्रय लिया रुपयों का आश्रय लिया हाय रुपये हाय रुपये अब रुपये नहीं तो मर जाएंगे हम ये आश्रय मेरे आश्रय अरे माम आश्रय से समझे भगवान का आश्रय एक आस हो एक बल एक आस विश्वास एक राम घर श्याम शासन मेरे तो भगवान है मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरे हो ना कोई संसार का आश्रय नहीं है माम आश्रय से वो कर्मी अभिप्रत होगी कर्मों में समन्ता अच्छी तरह प्रत होगी देव की उसके कर्म लागू होते ही कैसे निराशी जैसे तो कोई इच्छा नहीं मिली, कोई कामना नहीं, और अपने सुख सामग्री सुख के लिए सामग्री की चीज नहीं करता, धन संपत्ति करता सेवा के लिए, सुख जैसे सब जैसे जल खेस करके और ऊपर ले जाता किस लिए, बरसाने के लिए, दुनिया को बढ़ाने के लिए, ऐसे दिनों के हित के लिए सदगृहस्थ इकट्ठा कर दे पैसा और सबको दे देते, सबका हित करते, सबको सुख पहुंचाते, कैसी बढ़िया बात है। शारीरिक केवल कर्म, केवल निर्वाह मात्र, रोटी कपड़ा अपना निर्वाह हुआ, ऐसे निर्वाह करते, निर्वाह नहीं करते खुद मर जा, तुम अपने लिए नहीं, भोजन भी अपने लिए नहीं करते, कपड़ा भी अपने नहीं करते, सोते भी अपने लिए नहीं, काम भी अपने लिए नहीं, दुनिया का हित कैसे हो, कर्मियों की दुनिया के हित के लिए करता है, भक्तियों की भगवान की प्रशंसा के लिए करता है, अपने लिए नहीं करता, अज्ञान करता ही नहीं, प्रकृति कर रही, प्रकृति गुणा गुणे सुबर्शन थे, इंद्रिया इंद्रिया सुबर्शन थे, नानी गुणे भय करता है, गुणे पैसे परम देते, अपने लिए करता है, देखो कहीं तो भगवान अर्पण करे, प्रकृति अर्पण करे, कोई संसार के अर्पण करे, और कोई अपना अपने लिए करे, अपने की वो मरेगा, वो कर्म है, अकर्म नहीं होगा, अभी कर्म हो गए फल जाएंगे भगवान, समझे चार तरह का आदमी हो गए, फिर प्रकृति करते अपने अलग बिल्कुल गुरा गुण से ज्ञान होगी, और सब भगवान के लिए करते विष्णी सदगुरु सुमचर परम, कई संसार के हित के लिए सर्वभूत हित ही रहता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब करते दुनिया के हित के लिए, तो इसमें तो उद्धार हो जाता है, जो अपने लिए करता है उसको जन्म मरण प्राप्त होता है, प्रकृति करती है तो परमात्मा प्राप्त हो जाए, अरे भगवान परमात्मा के लिए करे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, दुनिया के इसके लिए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, अपने लिए करे जन्म मरण को प्राप्त हो जाए, जन्म के मर गए फिर मरो के फिर जन्म हो जाएंगे फिर मरो, ऐसे सारी दिन केवल कर्म निर्वाह मासा कुल में अपने से मिले सारा भी संतुष्ट गंगा थे अपने जो कुछ मिल जाए उसे संतुष्ट है, राग द्वेष रहित है, ईर्ष्या नहीं है, सिद्धि असिद्धि में सब रहते हैं, वे कृष्णापी नी बन जैसे करके भी बंद थे नहीं, कर सकते है परंतु बंद थे कृष्णापी नी बनते थे, ऐसे गत संघर्ष मिलते थे आशुद्धि में थी, और मुक्त है आशुद्धि से रही थे, ज्ञान अवश्य में ज्ञान सच्चिदानंद घर परमात्मा का पूर्ण हो रहा है, यज्ञ याद करते हैं केवल यज्ञ सुरक्षा होती है, इसके लिए आसन करते हैं समग्र प्रवीणीयते सब अंगलीन हो जाते, अब यज्ञ याद है इस यज्ञों का वर्णन अब होगा बत्तीसवें श्लोक में, यज्ञों का वर्णन अरे बजरंग है क्या कोई पद सुना देता है, और मैं अगर मनवा भी सुना दे तेरे को सला भी सुना दे, और समान प्रश्न धृत्य मिला है जब ऐसी रीत रूप चारों वर्ण जीवा है तो वह भोजन अब होगी दक्षिणा, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गविहस्ते ने सुनिचर व स्वपाके सब पंडिता समदर्शिना, इसमें लोग कई विचार करते हैं समवर्तन का, सबके साथ खान पान एक करना, रोटी बेटी एक करना, उसमें मैंने बात बताई थी पांच चीज आपके संतान की आपकी जाति की आपके वंश की रक्षा करने वाली है, एक तो आपका वेशभूषा जैसे मैं देखता हूँ ना ये सबके सिर साफ आए, एक हमारी बहनों के सिर पर माताओं के सिर पर ओढ़ना है कपड़ा है ये अपनी वेशभूषा है, नहीं तो आजकल बड़ो काम न सही, एक बात सुनी कि अवेला कैसे भूषण अभूरी सुधा, कलयुग का वर्णन आया रामायण में उसमें अगला कैसे भूषण स्त्रियों के गहनों का गहना रहेगा केसों का, तो केसों का गहना क्या बनाएगी, कंठला बनाएंगे कड़ी बनाएंगे, एक साथी बनाएंगे, एक गोजरी बनाएंगे, एक बाजूबंद बनाएंगे, एक हंसली बनाएंगे, एक आड़ बनाएंगे, एक चिमड़ियों बनाएंगे, क्या बनाएंगे, केसों का कौन सा गहना बनेगा, तो समझ में नहीं आती बात, किस गहना बनता कौन सा बनता है। फिर आज काल देखे तो समझ में आएगी केस उगाड़ दिया ये गहना, यहाँ चूड़ामणि जैसी थी, सोना सोने की चूड़ामणि बोलियो समझे माथे ऊपर छोटी छोरियों के राखड़ी, ये रहता था। भगवान राम जी ने सीता जी को मुद्रिका भेजी, इसका अर्थ कि तुम घबराओ मत, मेरा तेरे सिर पर हाथ है। तो उन्होंने अपना ये बोरिया भेजा, हो चूड़ामणि उतार देती थी, चूड़ामणि चूड़ा नाम केसों का, उसकी मणि ये उतार कर दिया कि आपके चरणों में मेरा मस्तक है। तो आज अगर अबला कच भूषण क्या केस उगाड़ दिया, बस केस उगाड़ दिया ये भूषण, सोना रहता था वहां मेरा खीला रहे, सोना रहता था। तो ये वेशभूषा बिगड़ने से जाति बिगड़ जाती है, तो वेशभूषा वही रखो ना पुराना, और भाषा वही बोलो, सीखो अनेक तरह की, अनेक जिलों की, अनेक देशों की, प्रदेशों की भाषा सीखो, मन बोलो अपनी भाषा, अपने घर में अपनी भाषा बोलो, भाषा से आपकी रक्षा होती है। आज अंग्रेजी बोलने वाले लगे यहाँ के पढ़ पढ़ा करके अंग्रेजी बोले, पास करे सब अंग्रेजी में, निज भाषा बिसराई है, पहल कोट पतनून शीश पर टोपी गोल जमाई है, धन कर जो महाराज आपने लीला अजब दिखाई है।
अंग्रेजी वेशभूषा में पहनने में आराम रहता है,
हाँ तो आराम तो रहता है, संतान नहीं होने से आराम रहता है, वंश खत्म हो रहा है, वंश आराम के लिए यही का मुकार फल विषय न भाई, मानव शरीर ये खेत है, खेत खेत में जाते हैं तो आराम के लिए जाते हैं, जा आराम करना तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना तो नरकों में चौरस लाल जुड़ी जाओ, और निज कमाई करो खेत में आओ, इधर सही रहो कम से खेत तुम खेत है, खेत में आराम करने जाया जाते हैं, यहाँ धन कमाना है और घर पर जाना खाना है, इस वास्ते आराम की दृष्टि रखने वाले तो भैंसा और सूर की तरह है, सूर आराम करते हैं, ये फूल जाते हैं बड़ा है वो पुष्य थी, ऐसा लिखा। तो आराम के लिए नहीं है भाई, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, उसके लिए। तो वेशभूषा और भाषा दो, और एक खान पान, खान पान अपनी जाति में और जीवन को और खाना पीना मत करो, लोगों में मछली अंडा मांस इसका प्रचार हुआ है, कब के जब खाना पीना एक लिया तब चाय पीते सबके सब एक साथ में, और वही कब और वही तासुर वही में पीते हैं, ये हनुमान प्रसाद जी पोता है कल्याण संपादक के लिए कहते थे, मैंने देखा है जब वे पाने वाला आते हैं छोटी छोटी चाय रह जाती है वो सीटी गटी करके और जो चाय बन रही घर में डाल देते हैं, देखी हुई बात है, सबका ऐसा पियो, फिर उसी समय चाय पे जिम भोजन मुताब सब प्रियम, आजकल आदमियों को वो भोजन प्यारा लगता है, तो खान पान है उसको शुद्ध रखो, आप में नहीं होगा खान पान में शुद्धि नहीं रखोगे तो आप में अंडा मांस और मछली ये सब आ जाएगा, भ्रष्ट हो जाओगे, पतन हो जाओगे, नरकों का रास्ता हो जाएगा, इस बात से खान पान अपने रखो तो सही रखो ठीक तरह से, हरेक से मत खाओ, वेशभूषा भाषा खान पान और व्यवसाय अपना में किसी गोरे से वाणिज्य वैसे गर्म स्वभाव खेती करो, गौ रक्षा करो, व्यापार करो, ये वेशियों की जीविका है, कर्म है अपना, परिस्थिति आत्म सूत्र का है, सौर्यम तेजोद ये क्षत्रियों का है, समोदमस्त ब्राह्मणों का है, तो अपनी जीविका वही करो जिससे आपकी रक्षा होगी, और कन्या उसी की लौट उसी को दो अपने वंश में ही, और जगह बेटी बेटी थी एक वर्ण शंकर पैदा हो गए, वर्ण शंकर लोग आज करते हैं कि दूसरे वर्ण में ब्याह करो, उसको आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद होगा क्या, होगा वर्ण शंकर, तो उनको कह दिया जाए प्रचार करने वाले थे आप वर्ण शंकर हो, फिर आ जाएगी, आप तो वर्ण शंकर के जनक हो महाराज, पैदा करने वाले हो, प्रचार करने वाले हो, तो वर्ण शंकर आना बाप हो से वर्ण शंकर हो, तो ये पांच चीजें आपकी रक्षा करने वाली है, वेशभूषा, भाषा, व्यवसाय, रोटी और बेटी, और उसमें रहो, मेरे को बड़ा आनंद आता है, एक गांव गए से हो जो भाई बहन बहुत इकट्ठे हुए, आज देखो ऐसा वर्ण आपको नहीं मिलेगा बीकानेर में, बम्बई में, कलकत्ते में, ऐसा वर्ण मिलता है क्या, और इतना पैसा मुझे मिले आप देख लो, कलकत्ता में रामायण होती तो लाख सवा लाख आदमी इकट्ठे होते ऐसे आदमी, पर सब वाले पगड़ी वाले किसी एक मिलेंगे, ओढ़ने वाली किसी एक मिलेगी, झेठगी झेठगी झीठा ही झीठा हुआ गया है, क्यों अबेरा कच भूषण यही भूषण, और गेन और क्या यही गेड़ आएगा, कबेरा कच कच भूषण भूमि सुधा, तो ये समता नहीं है, साथ से खाना साथ में ब्याह करने में समता है, पंडिता समदर्शी ना गीता भाया है, भूत ग्राम स एव अयम भूतवा भूतवा प्रलीयते, भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये तो हुआ है शरीर, और स एव अयम वो आत्मा स्वयं, वो सब में है, सब में सर्वभूत समात्मान सर्वभूतान चात्म, सर्वभूतों में स्थित सर्वभूत स्थान, और सर्वभूत आत्मा नहीं आत्मा में, तो तीनों के लिए बताइए, ऐसे योग करे साधना करे परमात्मा से प्राप्ति हो जाए, तो वो आत्मा एक है, उसको देखने वाले समदर्शी होते हैं, विद्या विनय संतने, कोई कहते एकता है तो विद्या विनय सामतरण गाय हाथी, हाथी की सवारी करो, कुत्ते की सवारी करो, एकता करो, समानता करो, गाय का दूध पियो तो कुत्ते का भी दूध पियो, कुछ एक पंक्ति भाया है, समता करते हो, सुनिचे और श्रोता कैसे, अब मैं तुम दोनों एक साथ बैठ जाओ, ठीक बात है, वो कुत्तों के साथ रहो, अरे कुत्तों की समता है ये, ध्यान दो आप, ये कुत्तों की समता है, ब्राह्मण की रसोई में जाएंगे तो पग धोकर नहीं जाएंगे, मैत्र जाएंगे तो कोई बात एक ही, वैसे वो समता है उसमें, असमता कुत्तों नहीं है, मिनका नहीं है, मिनक में बुद्धि हुआ करते है, वर्ण हुआ करे, आंसू हुआ करे, शुद्धि हुआ करती है, देखो सब आजकल वो बन रहा है, इसमें मानते ये क्षमता है, सबके खाना पीना, भगवान ने उदाहरण ऐसे दिए है कि जिनके साथ क्षमता का प्रताप कर नहीं सकते, गाय को घास दे तो ब्राह्मण आशी उठो घास नहीं दो, हम तो समदर्शी है, इसका नाम समदर्शी, आजकल की क्षमता ही हाथी लकड़ियां ही खा जाए, डाले जाले खा जाए, गाय घास खाए, पत्ती खाए, सुनी चाहिए स्वभाग स्वभाग, जहां विषमता करनी ही पड़ती है वहां भीतर में एक परमात्मा को देखते हैं, इस महिला है उसे क्या होगा, यही उत्तेजता सर को ये सांग साम्य स्थित माना, जिनका साम्यावस्था में मन स्थित हो गया है, उन्होंने जीवित अवस्थाओं में संसार को जीत लिया, कि संसार तो विषम है, सब सर्वेश भूतेशु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यतु अविनश्यन्तम् यह प्रसिद्धि, सब में अविनाशी तत्व को देखता है, वो वास्तव दर्शन दर्शी है, तो जिनका समता में स्थित हो गया जीते हुए संसार को जीत गया। क्यों? कि निर्दोष हमें समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है। जिसका अंतकरण निर्दोष और सम हो गया तस्मात ब्रह्म स्थित था, वे ब्रह्म परमात्मा में स्थित है, ये उनकी पहचान है। कितनी बढ़िया बात। तो क्या करना चाहिए? क्या क्षमता होने से क्या हो जाएगा? न प्रदेश प्रियम प्राप्य, प्रिय प्राप्त हर्ष नहीं होगा, अप्रियम प्राप्त न उद्देश्य। मन चाहती चीज मिलने पर हर्षित नहीं होना और मन के दुर्ग चीज मिलने पर दुखी नहीं होना, न उद्देश्य हर्षित नहीं होता। स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ा, बुद्धि जिसकी स्थिर है, मूर्खता जिनकी चली गई है, वो ब्रह्मवेद ब्रह्मणी स्थित, वो ब्रह्म वेता है, ब्रह्म स्थित है। ब्रह्म स्थित वाले के लक्षण है हरिक शोक नहीं होता, राग द्वेष नहीं होगा। जब तक अंधकार में राग और द्वेष होते हैं तब तक बातों से ही वो ज्ञानी है, बोध उसको नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोध होने पर राग द्वेष मिल जाते हैं। न प्रदेशित प्रेम प्राप्त है, नोध विधि प्राप्त चाहते हैं, स्थिर बुद्धि असमूठ है, ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित। किसी बात बढ़िया बात बताई, ये कैसे होगा? तो उसके लिए उपाय बताते हैं। बाह्य स्पर्श है शु असंता, बाह्य जो स्पर्श है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें जिनकी आसक्ति नहीं है, भोग भोगने की संग्रह की इसकी आसक्ति नहीं है। विन्यति आत्मन यद सुखम, वो आत्मन अंतकरण में जिस सुख को प्राप्त होता है, बाह्य राग द्वेष होने से, वस्तुओं में अच्छा मंद होने से वो स्थिर बुद्धि हो नहीं सकता। उसमें यद सुखम, उसको सुख मिलता है, आत्मबुद्धि प्रसाद जब सात्विक सुख होता है। तो बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहने से सुख मिलता है, वो सुख होता है सात्विक। सद्रम योग युक्त आत्मा ब्रह्म के साथ में अपना समान हो जाता है, तो सुखम अक्षयम, अक्षय रात में दिन में सुबह शाम जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सब में एक सुख रहेगा। हरदम हरदम मस्त, कई हाल मस्त, कई माल मस्त, कई तोता में ना सुआ में, खुद मस्ती बिना और मस्त, सब परे अविद्या कुएं में। तो सुख अक्षय मस्त कैसे होगा? बाह्य स्पर्श ध्यान देना, ये ही संस्पर्श जब होगा, संबंध होने से जो सुख मिलता है, ऐसे भोग है वे दुखों के कारण है। बाह्य स्पर्श में सुख भोगने वाला सुखी रह नहीं सकता, दुखी होना पड़ेगा, नियम है, नियम करके देख लो। बाह्य स्पर्श से हो सकता आत्मा, इनमें आसक्त न होने से क्यों कह क्यों नहीं कर, बाह्य स्पर्श है यही संस्पर्श जब होगा दुखों योने ये बचे, और आदि अंत वाले संबंध हुआ हुआ संबंध छूटा नहीं रहा। न तेसु रमते बुधा, बुधा तेसु न रमते, और ये रमते ऐसा न बुधा। मानो विवेकी सज्जन पुरुष इनमें रमण नहीं करता और इसमें राजी नाराज होता है, बुधा वो ज्ञानी नहीं है, समझदार नहीं है। क्या स्थिति होगी? स्वप्न होती है विजय सोडम प्राप्त शरीर विमोचना। जब तक शरीर है तब तक पहले पहले काम से क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग को सहने दे। मन अपने में काम का, क्रोध का, लोभ का, शोक का कोई वेग पैदा हो ही नहीं। सयुक्ता वो योगी है, वो सुख है, और स नर वो नर बहादुर है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो बहादुर है। स्त्री होती बहादुर, शक्न होती है शोरूम प्राग से दूर, काम क्रोधो धम बेगम सयुक्त है सखी नर, मनुष्य कहना नहीं वही है। तो क्या होगा? योनता सुख भीतर से सुख, शीतोज्वल चढ़ता है सिया, उसमें ऊपर कंबल और रजाई ओढ़ लेने से भी सी मिटता नहीं कि भीतर से सी उठे रोंगटा खड़ा हो जाए। ऐसे सुख तब होगा जब भीतर से सुख उभरेगा। कंचन खूल खंचन खान, मिली घट माही, रामदास के टोटो नाही, कल से न खान न खुली दूसरों से आनंद है, भीतर से यंत्रा सुखा अंतर आराम भीतर में ही रमण है, मस्ती ऐसी है अंतर ज्योति अंतर में ही प्रकाश है भीतर में ही। यहाँ अंत का अर्थ शरीर मत लेना, अंतर में अर्थ लेना सब संसार मात्र में जो अंतर रम रहा है अंत से वही सुख है वही रमण है अंतर। और वही प्रकाश है एक सच्चिदान में परमात्मा में एक बस है यो अंतर सुख हो अंतरा राम प्रशांत ज्योति हो सर्वोगी ब्रह्म निर्वाण वो ब्रह्म भूत ब्रह्म स्वरूप हुआ ब्रह्म निर्वाण थी निर्वाण ब्रह्म शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। लभते ब्रह्म निर्वाणम तीन जगह तीन श्लोकों में लभंत ब्रह्म निर्वाण ऋषि क्षीण परमशा जिनके पाप नष्ट हो गए है ऐसे ऋषि ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते छिन्न जी था हिदात्मा में दुविधा मिटकी दुविधा यू करूँ यू करूँ वहां जाऊँ वहां जाऊँ ये लू वो लू ये उपास करूँ ये करूँ या दुविधा है गुजरात दुविधा में जाऊँ गया माया राम न माया मिलेगी न राम जी मिलेगी उनकी दुविधा मिट जाती है। हिदात्मा में शरीर इंद्रिया जी के बस में सर्वभूत हिते रथा उनकी परीक्षा क्या होगी संपूर्ण प्राणियों में अपने स्वरूप को देखने के कारण जैसे शरीर में अपने को देखने से शरीर के हरेक अवयव का दुख मिटाना और सुख पहुंचाना हो जाता है ऐसे ही मात्र शरीरों के भीतर रहने वाला आत्मा सबको सुख देने वाला होता है। सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं भी ये उनके लक्षण होते हैं जो सबके बीच में सब आत्मा को देखता है। ते प्राप्तमंत्री मामे वो ये आया बार बार ते प्राप्तमंत्री मामे वो सर्वभूत हिते रथा लगन से ब्रह्म निर्वाणम के सर्वभूत हिते रथा संपूर्ण प्राणी के हित में रहते हो निर्वाण ब्रह्म को भी प्राप्त हो जाते हैं सगुण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं दोनों के लिए सर्वभूत हित सबका हित कर हित कैसे हो। राम जी अंगद को भेजते हैं तो कहते ये करा रावण को काज हमारा तासु हित हो पर हित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधम आई पर हित बस जिनके मन माई तिनका जग दुर्लभ कृष्ण नहीं कोई चीज दुर्लभ नहीं जिनके हृदय में दूसरे का हित निवास होगा सबका हित हो सर्वे भवंत सुखे राम सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग हो सबके सब सुखी हो जाए सबके सब निरोग हो जाए सबके मंगल ही मंगल होता रहे कभी किसी को दुख नहीं हो ये जिसके भाव है वो मस्त रहता है। कैसे होते हैं कि सर काम क्रोध भी उगता है ना कामना है ना क्रोध है ना लोभ है ना मोह इससे रहित हो जाते हैं और यदि दिन को भस्म है ऐसे यति सन्यासी अथवा यत्न करने वाले जो साधक है ऐसे उनसे विदितात्म नाम परमात्मा का ज्ञान हो गया है अभी तक ब्रह्म निर्वाण वर्तते चारों तरफ ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म निर्वाण निर्वाण ब्रह्म सब जीव है तो ब्रह्म निर्वाण मरे तो निर्वाण बुखार आवे तो ब्रह्म निर्वाण अपमान हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण निंदा हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण मान समाज निर्माण मान अपमान मान अपमान तुल्य मिश्रा सर्वाधम भविष्य गुणा से सोचते थे ऐसे भी इसके लिए साधन बताते हैं इसके लिए साधन बताते हैं स्पर्शान की त्वा बहिर बाह्यान ये शब्द शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये बाह्य विषय है इनको बाहर जीत करे इनमें सुख न रहे अभी बताए बाह्य स्पर्श स्वास्थ्य होता तो स्पर्शान की त्वा बहिर बाह्यान चक्षु यहाँ लगा त्रिमुटी नहीं है ये चक्षु लगाने जो प्रकार है एक यहाँ देखने से चक्षु बीच में आ जाती है और एक यहाँ देखे नाक तो चक्षु एक मिलते हैं ये ध्यानियों की बात बताते हैं। और प्राणापान समाप्त प्रभुता नासा भ्यंतरचारी लोग ये विलक्षण बात है। पान अपान कौन से नासा भ्यंतरचारी, नासा में आने जाने वाले रेशक पुरुष है, इनको समान करते समान इतनी देरी रेशक में जितनी पूर्व में जितनी पूर्व में उतनी रेशक में इतना लंबा श्वास हो जाता है ध्यान करने से। और यथेन्द्र मनोबुद्धि नीचे की गति होती है वो अपान है और ऊपर की गति होती है प्राण है। नासा बेंद्र जानो समोकृत हुआ यथेन्द्रिय मनोबुद्धि इंद्रिया मन बुद्धि जिसका यंग्र है मुनि और मननशील केवल मोक्ष परायण। आज सुबह विषाई थी बात मानो परमात्मा की प्राप्ति करना है ये ध्येय पक्का बढ़ा देना चाहिए। मनुष्य मात्र बना है भगवान की तरफ से कल्याण के लिए। अब ये यहाँ आकर धंधा और छेड़ दिया धन कमाचार बहुत भुगतार यूं कर दूंगा यूं कर दूंगा। अरे कर क्या रहा है किस लिए आया तू, आयो जाके कार्य तू करा संभाले वो जिस काम के लिए आया भूल गया रात में ऐसे भूल गए जी राम धंधो करती करती घर को करके धंधे भूल गए भगवान को भूल गए। घर कितना दिन तुम्हारा रहेगा ये खेत ये बड़े बड़े रुपये ये मकान थोड़ा दिन का है समझे। पानी में बताशा तन का तमाशा है पानी में बताशा गिर जाए जीव तन का तमाशा शरीर बड़ा चलाता है दे दे मुंह सांता हो गरीब मारता कर पुटिए पाओ गया झक मारता खत्म हो गया समझे। मैं अनु कर लेंगे ऐसे कर लूंगा ये कर लूंगा जानते हो मेरे को समझते हो मैं कौन हूँ। हाँ सब जानते हैं क्या हो कि मलमूत्र पैदा करने की मशीन हो बढ़िया बढ़िया भोजन दे दो और भ्रष्टा बना लो गंगा जी जमुना जी का जल दे दो और पैसा बना लो ये फैक्ट्री हो आप मैं जाना थे हाँ सब जाना था मैं खास बात ये है जिसमें इस रहते हो यूं कर दूंगा मैं यूं कर दूंगा यहां मार दूंगा पैसा रुक जाए तो पैसा यूं यूं करे मुझे करे किसी की ताकत से ताकत चाहिए बड़ा बड़ा अभिमान मोक्ष पढ़ाना केवल कल्याण ही करना है इसके प्राण हो जाओ कि महाराज केवल हो जाए आपकी तरह बाबा जी थोड़ी देर मांगे रोटी मिल जाए।